हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है और आज बहुत ही विशेष दिन है, विशेष उत्सव। आज श्री संप्रदाय के श्रील रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। हरि वो। तो श्री संप्रदाय जो कि माता लक्ष्मी के द्वारा शुरू किया गया, उसमें नाना प्रकार बहुत सारे आचार्य आए, लेकिन उसमें से जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं वो श्रील रामानुजाचार्य हैं ना। इस प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए ना। खुद आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी आते हैं और जो मायावाद का सिद्धांत जो शंकराचार्य के जी के द्वारा फैलाया गया है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। उसका कहा जाता है कि उसके जितने भी दांत थे वो सारे दांतों को तोड़ देते हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवान की भक्ति का वो बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। तो उनके जीवनी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें प्राप्त होती है, लेकिन समय बहुत कम है, 45 मिनट्स का ही टाइम है। तो इसमें जो मुख्य बातें होंगी जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं और सीख सकते हैं, तो खास करके जो रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों से हमें सीखने को मिलता है वो गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा। गुरु की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, गुरु में कितना निष्ठा होना चाहिए, उनके जीवन से भी हम सीखते हैं और उनके जो शिष्यगण हैं उनके जीवन से भी हम सीखते हैं। और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है इसके विषय में हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो उन्होंने अपने जीते जी 74 मठों का निर्माण किया, 700 सन्यासी बनाए, 12,000 ब्रह्मचारी बनाए। तो गृहस्थों की संख्या तो समझ सकते हैं कितनी हो सकती है। इतने सारे लोगों को उन्होंने भक्तिमय जीवन में लगाया और उस समय में प्रचार किया जब पूरा का पूरा भारतवर्ष एक प्रकार से मायावाद के चुंगल में फंसा हुआ था। शारीरिक भाष्य के माध्यम से शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में न केवल शारीरिक भाष्य शंकराचार्य जी के सिद्धांत था बल्कि जैन धर्म भी उस समय काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो उस समय में इस प्रकार का प्रचंड प्रचार करना और लोगों को भगवान की तरफ उन्मुख करना यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है ना। और जितने भी फॉलोअर्स हैं श्री संप्रदाय के, आप देखेंगे सभी का एक यूनिक कनेक्शन है रामानुजाचार्य जी के साथ, बहुत डीप रिकॉर्ड्स है उनके लिए। इसलिए रामानुजाचार्य जो है आज से लगभग अब 1017 में उनका प्राकट्य हुआ था, आज कितना हो गया है 2019, कितने वर्ष हो गए, 1000 वर्ष तो हो ही गया है ना। अभी 2 वर्ष पूर्व उनकी सहस्त्राब्दी मनाई गई थी, तो 1002 वर्ष के बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट किसी भी आचार्य का इतना मैसिव लेवल पे नहीं है, जो आज भी वो उसी उनका जो प्रेम है श्री संप्रदाय के लोगों का रामानुजाचार्य के साथ उतना ही है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो उनके लिए भी हम सबका बड़ा घनिष्ठ संबंध और घनिष्ठ एसोसिएशन होना चाहिए। उनकी स्थिति भी हमें उसी प्रकार से बना करके रखनी है जैसे कि शिष्य संप्रदाय में लोगों ने रामानुजाचार्य जी का बना कर, तभी आज 1000 वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको कल्चर थोड़ा बहुत दिखता है कहीं भी तो दक्षिण भारत में ही दिखता है। उत्तरी भारत में तो गया है ना, दक्षिण भारत में अभी भी आप देखेंगे इतनी मर्यादा के साथ और इतनी उनकी भक्ति भावना है भगवान के प्रति ना। और दूसरी खास बात क्या है कि लाखों की संख्या में गृहस्थ लोग ना अपनी जितनी भी सेवाएं हैं, अपने जितने भी दैनिक कार्य हैं, वो भगवान के मंदिर से कनेक्टेड ही रखते हैं। चाहे उनका बच्चे का जन्म होता है, चाहे उनका मुंडन संस्कार होता है, चाहे उनका विवाह होता है, चाहे कोई भी उनके जीवन में बातें होती है, तो वो भगवान के मंदिर में जाके ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब भगवान को उन्होंने अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाया है ना। तो ये बहुत खास बात है। आप देखेंगे शिष्य संप्रदाय में और जितने भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं शिष्य संप्रदाय से, तो ये भी हमारे लिए बहुत सीखने को मिलता है। और जो वो मैनेजमेंट करते हैं, प्रभुपाद जी एक बार तिरुपति मंदिर गए थे, तो वहाँ के मैनेजमेंट को देखकर प्रभुपाद जी ने बोला अपने शिष्यों को कि देखो ये कितना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो किससे सीखो, टीटीडी वालों से सीखो, है ना। ये टीटीडी वाले कितना अच्छा, इतने भव्य मंदिर का मैनेजमेंट करते, इतने लोगों को, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, सबके लिए लाइन की व्यवस्था करना, कहीं भी अफरा तफरी इस प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है रामानुजाचार्य जी का अभी भी पूरे भारतवर्ष में। तो इनके जो मुख्य मुख्य गुरु हुए हैं, यमुनाचार्य, कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, रामानुजाचार्य जो है वो यमुनाचार्य है ना। तो यमुनाचार्य भी उसी जो नौ अलवर होते हैं, नौ अलवरों की परंपरा में आते हैं यमुनाचार्य। और श्रीरंगम के जो मेन आचार्य होते हैं उनमें से वो एक हैं। तो एक बार यमुनाचार्य कांचीपुरम जाते हैं और वरदराज जी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर वो देखते हैं रामानुजाचार्य जी को। रामानुजाचार्य को देखते हैं किसके साथ, यादव प्रकाश के साथ। और यादव प्रकाश जो था उस समय मायावादी सिद्धांत का प्रचार करने वाला था। तो रामानुजाचार्य जी को, यमुनाचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को देखकर बहुत बुरा लगा कि किसके संग में है ये, है ना। तो स्पेशल प्रार्थना वो करते हैं वरदराज जी के साथ कि इससे इनका संग छुड़ा दो किसी तरह से क्योंकि मायावादी का एसोसिएशन जो होता है सबसे खतरनाक एसोसिएशन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक पिंजरे में शेर है और एक पिंजरे में मायावादी है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आप कौन से पिंजरे में जाना चाहोगे, तो कितने लोग शेर के पिंजरे में जाएंगे? हाँ जी, कोई नहीं। कितने लोग मायावादी के पिंजरे में जाएंगे? नहीं, एक पिंजरा तो आपको चूज करना है माला ऐसा कहा गया है कि शेर के पिंजरे में चले जाओ, क्योंकि एक बार वो आपको खाएगा, अगली बार आपका जन्म हो जाएगा। तो जन्म तो होना ही है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी हो जाता है, और फिर आप भक्ति कर सकते हैं। तो एक मृत्यु होगी, वो शरीर की मृत्यु होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मायावादी का संग करता है तो फिर क्या होता है, उसका आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए कहा जाता है मायावादी भाष्य सुन ले होले सर्वनाश। अगर मायावादियों का संग करते हैं, उनका भाष्य सुनते हैं, तो सर्वनाश हो जाता है। तो रामानुजाचार्य जी उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे, यादव प्रकाश के स्कूल में पढ़ते थे, और कई बार उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था यादव प्रकाश के साथ। अब बहुत दिल को मार करके वो उनके क्लास में जाते थे उनके। तो एक बार बहुत ही अभद्र टीका किया उन्होंने यादव प्रकाश जी ने, क्या क्या एक शब्द था, कपि असम पुंडरी का अक्षाम अक्षिणी, कि कपि असम, उन्होंने ऐसा बोला कि कपि का जो पिछला भाग है जो रेडिश कलर का होता है, कपि मतलब जो बंदर है, बंदर का जो पिछला भाग है जो रेडिश कलर का है, वैसा ही भगवान की आंखें हैं। पुंडिर का अक्षम मतलब विष्णु की आंखें जो है वो बंदर के पिछले भाग का जो लालिमा वाला पार्ट है उसके हिसाब का। तो यह सुनकर रामानुजाचार्य को बहुत गुस्सा भी आया और बहुत बुरा लगा उनको, और उनके आंखों से अश्रु गिरने लगा, और अश्रु ऐसा गिरा कि गरम गरम आंसू उनके पैरों में यादव प्रकाश जी के। तो यादव प्रकाश ने बोला, अगर क्या हो गया भाई, तुम रो क्यों रहे हो? बोले, आपने ऐसे व्याख्या की है, भगवान की इतनी सुंदर आंखें हैं जो सबको मोहित करती हैं, आपने उसकी तुलना किसके साथ की है? बोले, ये तो ऐसा ही है, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है। बोले, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि तुम क्या शंकराचार्य जी से ज्यादा महान बन गए, क्या तुम अपने टीका देने लगोगे? बोले कि नहीं, ये गलत टीका है, तो बताओ तुम्हारी क्या टीका है ना, तुम क्या इसके विषय में बोलते हो? तो उन्होंने बोला कि कह पिबती जलम, कपि का मतलब है कह पिबती जलम, कि जो जल को पीता है। तो जल को कौन पीता है? सूर्य, सूर्य जो है जल को पीता है। असम का मतलब है कि उसके सानिध्य में रहकर वो ब्लॉसम करता है, वो खिलता है। तो सूर्य के सानिध्य में रहकर कमल का फूल खिलता है। तो भगवान पुंडरीक राक्षम जो विष्णु भगवान हैं, उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, वो कमल कमल नयन है ना, ये इसका मतलब है। तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने प्लानिंग करने लगे कि निश्चित रूप से ये आगे चलकर मुझे भी डिफीट कर देगा। तो एक बार एक यात्रा के बहाने वो उनको लेकर के जाते हैं उत्तर भारत की तरफ, और वहाँ पे उनको मरवाने का प्लान करते हैं। लेकिन उनके एक भाई होते हैं रामानुजाचार्य जी के, गोविंद, उनको पता चल जाता है उनके षड्यंत्र का और उनको बता देते हैं। तो उत्तर भारत से भागते भागते वो इधर आते हैं दक्षिण भारत की तरफ, रात्रि हो जाता है। तो रात्रि के समय उनको एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ मिलते हैं। वो शिकारी कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ, है ना। तो जाते हैं पानी लेकर के उनको पिलाते, बोले दूसरी बार और पानी पिलाओ, तीसरी बार मांगते हैं। तो तीसरी बार देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ के लोगों से वो पता करते हैं कि वो किस स्थान में है, तो उनको पता चलता है कि वो कांचीपुरम पहुँच गए हैं, जहाँ उनका जो निवास स्थान था। तो ये जो थे हंटर, शिकारी के रूप में जो आए थे, ये वास्तविक रूप से कौन थे? भगवान खुद थे, लक्ष्मी नारायण। उन्होंने इनको वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया कांचीपुरम में, है ना। और उसके बाद इनका नोकझोंक चलता रहा यादव प्रकाश के साथ। तो एक बार एक कन्फ्रंटेशन के बाद यादव प्रकाश ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि जाओ, तो मेरे स्टूडेंट मनने लायक नहीं, ऐसा करके। तो बहुत खुश हुए और काफी एकांत में भजन करते थे। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़े वैष्णव थे कांचीपूर्ण के नाम से, और कांचीपूर्ण जो है वरदराज जी की सेवा करते थे, है ना। कांचीपुरम में भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है वरदराज जी का, और कांचीपूर्ण ऐसे व्यक्ति थे जो वरदराज जी के साथ साक्षात वार्तालाप करते थे, है ना। वो पूछते थे और उनको वो आंसर देते थे। तो गांव वाले को कुछ भी जिज्ञासा होती थी, कुछ भी पूछना होता था, तो कांचीपूर्ण को जाके बोलते थे, मेरे लिए थोड़ा पूछ के आना भगवान क्या बोलते हैं। और वरदराज जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वरदराज जी की वो क्या सेवा, स्पेशल सेवा करते थे, उनको वह चावर पिलाते थे। क्योंकि वरदराज जी कहते हैं कि उनको गर्मी थोड़ा तेज लगती है ना। तो कांचीपुरम की क्या सेवा थी कि वो फैन को, चावर को पानी में डुबा करके ठंडा करके फिर वो वरदराज जी की सेवा करते थे, और फिर उनसे बातें भी घंटों घंटों उनसे बातें किया करते थे, है ना। तो उनके सेवा भाव को, उनके भक्ति भाव को पूरा उस समय जानते थे लोग। तो उनके सिंपल व्यवहार से, उनके भक्ति से रामानुजाचार्य जी बहुत ही आकर्षित होते हैं और उनको, उनका संग लेने के लिए ललायत रहते हैं। तो एक बार वो उनको इनवाइट करते हैं अपने घर पर, कहते हैं आप हमारे घर पे आइए। और उनके जो योजना ये होती है कि हमारे घर पे वो आएंगे और उनका उचिष्ट जो हम ग्रहण करेंगे। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है रामानुजाचार्य जी की, वो स्मार्ट ब्राह्मण की बेटी होती है और अपने आप को उच्च कुल की समझती है, और ये जो कांचीपूर्ण होते हैं वो एक छोटे परिवार से, शूद्र परिवार से होते हैं। तो उनके लिए वो फीस्ट बनाती है, सब कुछ करती है। और जब इनको पता चलता है कांचीपूर्ण को, तो थोड़ा पहले आ जाते हैं। जब वो लेने के लिए जाते हैं तो वो पहले आ जाते हैं और बोलते, ठीक है मुझे जाना है, वरदराज जी की सेवा करनी है, तो जल्दी से मुझे प्रसाद खिलाओ। वो प्रसाद खा करके अपना जगह वो खुद ही गोबर वगैरह से साफ करते हैं, और फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है रक्षाम्बल रमणाचार्य जी की, तो क्या करती है, सारा का सारा जो प्रसाद बचा होता है वो सारा छोटे जात के लोगों को बांट देती है, बर्तन को सारे धोती है, फिर सफाई करती है, फिर अपने पति के लिए दोबारा से कुकिंग करती है। तो उनके पति पूछते भाई कहाँ गए, वो आए थे क्या? बोला आए थे, वो तो प्रसाद लेके चले गए। तो कहाँ उनका महाप्रसाद, मुझे खाने को दो। बोलते वो तो मैंने सारा धो धा के वो कर दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कितने बड़े वैष्णव को अपने घर में मैंने बुलाया था और आपने क्या किया, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया है ना। फिर भी कांचीपूर्ण की सानिध्य के लिए, उनके संग के लिए हमेशा ललायत रहते थे। वो बारंबार उनको कहते थे कि आप यादव प्रकाश ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो आप मुझे अपने चरणों में रखिए, अपना शिष्य बनाइए। लेकिन कांचीपूर्ण कहते थे क्या, मैं तो एक छोटे जात का व्यक्ति हूँ है ना, मैं आपको कैसे शिष्य बना सकता हूँ, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, उच्च कुल से हैं ना। फिर भी बारंबार रिक्वेस्ट करने से रामानुजाचार्य जी को उन्होंने एक सेवा में लगाया ना। क्या सेवा थी, कि वरदराज जी के लिए आप एक मटका पानी आपको प्रतिदिन लाना है, जल लाना है, जिससे वरदराज जी का स्नान कराया जाएगा। तो प्रतिदिन की सेवा इनकी बन गई, वो प्रतिदिन लाते थे, उनको जल चढ़ाते थे। तो उधर जब यमुनाचार्य जी बीच में जब आए थे, उनको देखा था, इनके लिए स्पेशल प्रार्थना की थी, तब उनके मन में वही चल रहा था कि कैसे इसको मैं श्रीरंगम लाऊं है ना, और अपना शिष्य बनाऊं। इस प्रकार से यमुनाचार्य जी चिंतन कर रहे थे। लेकिन यमुनाचार्य जी की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो खराब होता चला गया, वो मरणासन हो गए। तो उन्होंने अपने शिष्य महापूर्ण को भेजा कि आप जाइए और उनको बुला करके लाइए यहाँ पर ना। और इस बीच में क्या हुआ कि महापूर्ण जाते हैं उनको लेने के लिए, और वरदराज जी के समक्ष में वो नाना प्रकार के गीतों को गाते हैं। तो उसको सुन करके रामानुजाचार्य जी बहुत आकर्षित होते, बोलते आप तो बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे वैष्णव हैं। तो कह रहे हैं आपको स्पेशली यमुनाचार्य जी ने बुलाया है, तो चलिए हमारे साथ। तो जब तक वो जाते हैं तब तक यमुनाचार्य जी शरीर छोड़ चुके होते हैं, देह त्याग कर चुके होते हैं। तो उनके शरीर को उनके आश्रम से कावेरी के तट पर लाया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो वहां पे एक चीज नोट की जाती है कि उनके जो तीन उंगली है वो तीन उंगली इस प्रकार से बंद रहते हैं ना। और इधर जब महापूर्ण को यमुनाचार्य जी को रामाचार्य जी को देखते हैं, तो उनके बहुत ही स्थिति बहुत खराब होती है, वो मूर्छित होते हैं बारंबार। लेकिन जब वो तीन उंगली को देखते हैं रामाचार्य, तो उनसे पूछते हैं कि क्या ये उंगली हमेशा ऐसे बंद थी या अभी बंद भी, या उनके हाथ खुले रहते थे या बंद ऐसे शुरू से था इनकी बंद? कहते नहीं, हाथ तो ऐसे खुला रहता था, तो तीन उंगली बंद क्यों है ना। तो फिर उनको वो प्रार्थना करते हैं रामानुजाचार्य जी, तो उनके चेहरे पे एक लगता है कि इनकी मृत्यु अभी हुई नहीं है जिस प्रकार से ना। तो कहते हैं कि इनकी जो तीन उंगली है इसके लिए मैं तीन प्रतिज्ञा करता हूँ ना। तो पहली प्रतिज्ञा मैं करता हूँ श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कि पहली प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति में स्थित रहकर पूरे समाज से ये जो माया का भ्रम है, इस माया के भ्रम को मैं हटाऊंगा। तो जैसे ये बोलते हैं उनकी एक उंगली खुल जाती है। अरे वो आपको पता चल गया पहली उंगली क्यों खुली, क्या बोला उन्होंने, माया के जंजाल में जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को मैं यहां से बाहर निकालूंगा प्रचार करके है ना। दूसरा, मैं श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना करूंगा जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी होगी। तो जैसे ये बोलते उनका दूसरी उंगली खुल जाता है। हरी वो, और तीसरा कहते हैं कि मैं एक भक्त का नाम रखूंगा जिसका नाम पराशर होगा, क्योंकि पराशर मुनि ने भगवान विष्णु के विषय विष्णु पुराण लिखा है, उनका बहुत गुणगान किया है, तो उनके लिए मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर को। तो जैसे ये बोलते उनकी तीसरी उंगली खुल जाती है, हरि वो तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अब सही व्यक्ति आ गया है हमें लीड करने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में। लेकिन वो ज्यादा समय वहां पे नहीं रहते, यहां तक कि वो रंगनाथ जी के दर्शन भी नहीं करते हैं। रंगनाथ गए थे, रंगनाथ जी के दर्शन भी नहीं करते हैं। क्यों दर्शन नहीं करते हैं? कहते मैं गुरु के दर्शन करने के लिए आया था, गुरु ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन भगवान ने मेरे गुरु को छीन लिया, तभी मैं गुरु भगवान के दर्शन नहीं करूंगा। ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं वापस कांचीपुरम, और कांचीपुरम में अपनी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन अभी उनके दीक्षा तो हुई नहीं थी, तो उनके मन में यह प्रश्न था, कांचीपुरम जो है वो दीक्षा दे नहीं रहे थे, तो उनके मन में यह प्रश्न था दीक्षा के लिए कि दीक्षा लेनी है, कैसे लूं दीक्षा। तो बारंबार वो वरदराज जी से प्रार्थना भी करते थे, कांचीपुरम को कहते थे कि मेरे मन में कुछ संशय है, तो आप जाइए और मेरे इस संशय का निवारण कीजिए, वरदराज जी से पूछिए कि उसके मन में जो डाउट्स है उसके डाउट्स का निवारण करने के लिए। तो वरदराज जी के समक्ष कांचीपुरम कहते हैं कि वो जो आपका सेवक है रामानुज, वो इस प्रकार से कुछ संशय है उसके मन में। तो भगवान उनको छह चीजें बतलाते हैं, उसमें से एक चीज कहते हैं कि उसको बोलो कि वो महापूर्ण से दीक्षा ले ले। और वहां पर महापूर्ण को रंगनाथ जी कहते हैं कि तुम जाओ रामानुज को दीक्षा दे दो। तो दोनों देखे कैसे रेसिप्रोकेशन हो रहा है ना, वरदराज जी इधर बोल रहे हैं कांचीपूर्ण को, उधर रंगनाथ जी कह रहे हैं महापूर्ण को जाओ उनको दीक्षा दीजिए, इधर कहते हैं कि उनको बोल दो कि आप महापूर्ण से दीक्षा ले ले। तो ये बहुत खुश होते हैं और इधर से ये चलते हैं, जाते हैं उसके रंगनाथ की तरफ, श्रीरंगम की तरफ, और महापूर्ण जो है वो कांचीपुरम की तरफ आते हैं। तो दोनों एक जगह पे मिल जाते हैं, है ना। जहाँ पे मिलते हैं तो महापूर्ण कहते हैं कि चलिए वहाँ कांचीपुरम में चलते हैं, वहाँ वरदराज जी के समक्ष आपको दीक्षा दी जाएगी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कि जीवन का क्या भरोसा कि जब तक हम कांचीपुरम जाएंगे तब तक ये शरीर छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ पता है, इसलिए दीक्षा तो आप मुझे यहीं पे दो, है ना। तो महापूर्ण ने उनको वहीं पे दीक्षा दिया। अब दीक्षा भी देखिए इतना आसान नहीं था, हमें तो बहुत आसानी से कुछ कष्ट नहीं होता है दीक्षा लेने में, लेकिन उन्होंने कैसे दीक्षा दिया, दो डिस्क थे, एक कमल का था और एक चक्र का था, उसको यज्ञ जो होती अग्नि उसमें डाला गया, और वो जब पूरा तप गया, अच्छे से गर्म हो गया, तो उसको लिया गया, एक में लगाया गया चक्र और एक में लगाया गया कमल का फूल, नहीं शंख, सॉरी शंख और चक्र ऐसे लगाया, गरम गरम लोहा तपता हुआ, हरि बोल तो ऐसे उनकी दीक्षा हुई। और उसके बाद महापूर्ण उनके घर पे आते हैं और काफी समय व्यतीत करते हैं, 6 महीने उनके साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी और महापूर्ण की जो पत्नी थी उनके बीच में थोड़ा नोकझोंक हो गया फिर से क्या नोकझोंक हो गया कि महापूर्ण की पत्नी जो पानी निकाल रही थी, तो वो जो पॉट था उससे कुछ पानी जो है इनके पॉट में चला गया, है ना। देखिए छुआछूत किस हद तक फैला हुआ था, वो पानी निकाल रही थी, पानी का कुछ हिस्सा चला गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि तुम छोटी जात की हो, ऐसे ऐसे तुम्हारा पानी मेरा इसमें आ गया, तुम इसी समय पानी भरने क्यों आती हो, ऐसा करके उसको खूब बोलती है। तो महापूर्ण की वाइफ को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा अंदर से कैसे कैसे मुझे कह सकती है, तो अपने पतिदेव को वो कहती है। तो पतिदेव कहते हैं कि लगता है कि रंगनाथ जी हमें इधर बुला रहे हैं। अब देखिए कितना सोबर वे है चीजों को देखने का, एक तो था कि मेरे शिष्य की पत्नी ने ऐसा कैसे बोल दिया, अभी मैं उसको डांटता हूँ, उसको गुस्सा करता हूँ, लेकिन उसको किस प्रकार से उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया कि हम कई दिनों से हैं, 6 महीने से हैं, इनके घर पे हैं, और उधर श्रीरंगम में उनकी सेवा नहीं हो पा रही होगी अच्छी, तो श्री रंगम में रंगनाथ जी हमें बुला रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का उन्होंने योजना बनाया है। तो चुपचाप बिना बताए दोनों पत्नी, पति पत्नी जो है चले जाते हैं रंगनाथ। और जब रामानुजाचार्य जी आते हैं, कहते कहाँ गए वो दोनों, तो कह रहे वो तो बहुत कह रहे थे कि हमें जाना है, हमें वहां सेवा हमारी छूट रही है, ऐसा ऐसा करके, तो वो तो बिना बताए चले गए। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, पूरी कहानी इनको पता चला, तो उन्होंने मन में बना लिया कि अब इसके साथ मुझे नहीं रहना है, क्योंकि इसकी बुद्धि किसमें है, इसकी बुद्धि जाति कॉन्शियसनेस है, जो विष्णु भगवान के भक्ति कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ये जाति कॉन्शियस में ज्यादा फंसी हुई है, तो इसलिए इसको छोड़ के ही मेरी भक्ति हो सकती है, ऐसा होगा तो मैं तो कभी वैष्णवों का संग कर ही नहीं पाऊंगा, घर में कुछ भक्त आ ही नहीं पाएंगे, वो छुआछूत की भावना इसके मन में रहेगी। तभी से उन्होंने प्लान कर लिया कि मुझे क्या लेना है, अब संन्यास लेना है। तब वो गए, है ना, वरदराज जी से प्रार्थना कर रहे थे। तो उसके बाद एक घटना और हुई है कि एक ब्राह्मण जो है उनके घर पे आता है और वो भी भिक्षाटन मांगता है, तो उनकी पत्नी कहती है कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, यहाँ पे कोई भिक्षा नहीं है। वो गुस्से में थी। और वो ब्राह्मण जब वापस आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी ने तो आज भगा दिया। तो उनको और गुस्सा आ गया, अरे अभी तो उसको भगाया, उसको भगाया। तो कहते अरे इधर आओ ब्राह्मण, तुम ऐसा एक लेटर वो लिख करके देते हैं, बोले कि ये लेटर जो है आपके मायके से आया है ना, और लेटर में लिखते हैं क्या कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, मैं अकेला क्या क्या करूंगा, आ जाओ घर में, हम सब मिल करके अपने भाई की शादी मनाते हैं। तो ब्राह्मण जाता है, कहते मैं तो आपके पिता के द्वारा भेजा गया था ना, तो ये लीजिए लेटर। और तब तक ये भी पहुंच जाते, वो लेटर पढ़ते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम जाना चाहती हो? बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसी ब्राह्मण के साथ उनके उनको विदा कर देते हैं, और ये फिर अपना चले जाते हैं वरदराज जी के मंदिर, वहां पर सैफ्रन क्लोथ पहनते हैं, डंडा लेते हैं, वरदराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, और क्या बन जाते हैं, वो यतिराज बन जाते हैं। यति का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासियों में जो राजा जो टॉप मोस्ट, यतिराज करके। तो उन्होंने सन्यास जो है डायरेक्ट वरदराज जी से ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वो कांचीपुरम में ही सेवा में लगे हुए थे। और उधर श्रीरंगम में जो कि शिव संप्रदाय का सीट था, वहां के जो उस समय के तत्कालीन लीडर थे, वो उतनी अच्छे प्रकार से लीड नहीं कर पा रहे थे। वो खुद भी कह रहे थे कि मैं देखो यमुनाचार्य नहीं हूँ, वो इतने अच्छे लीडर थे, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, है ना। तो रामानुजाचार्य है वो अच्छा लीड कर सकता है, लेकिन वो तो वरदराज जी की सेवा में लगे हुए हैं। और वो काफी प्रार्थना करते थे रंगनाथ जी से कि उनको किसी प्रकार से कांचीपुरम से इधर लाया जाए। तो रंगनाथ जी ने महापूर्ण को बोला, देखिए कितनी फ्रीक्वेंट बातचीत होती थी डीटीज का डिवोटीज के साथ, वो कुछ भी होता था डीटीज के पास जाते थे, अपनी याचना रखते थे, वो बोल देते थे कि ऐसा करो। तो रंगनाथ जी ने उनको बोला कि देखो वो वरदराज जी की सेवा में बहुत मग्न है, वरदराज इतनी आसानी से उनको छोड़ेंगे नहीं, मतलब उनको भी उनकी सेवा अच्छी लग रही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वरदराज जी को प्रसन्न करना पड़ेगा पहले, जब वरदराज जी प्रसन्न हो जाएंगे तब वो उनको इधर जाने के लिए बोलेंगे। तो कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, कह रहे यमुनाचार्य जी के जो पुत्र हैं वररंगा, वो बहुत सुंदर गाता है ना, भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाता है, तो जाओ उसको भेजो और उसके यही सेवा लगाओ कि जाके वरदराज जी के आगे सुंदर सुंदर भजन गाए ना। तो महापुर ने वररंगा जी को बुलाया, बोले कि जाओ प्लीज करो वरदराज जी को। वो गए और बहुत सुंदर सुबह शाम जो भी सुन रहे हैं उनकी भजन को, उनके गीतों को, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा अच्छा भक्त है कहाँ सा है। और वरदराज भी बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि बहुत वेरी गुड वेरी नाइस, मैं तुम्हारे इस सुमधुर भजनों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कह रहे हमारी इच्छा है कि रामानुजाचार्य को रिलीज कर दीजिए, श्रीरंगम में उनकी ज्यादा आवश्यकता है, रंगनाथ उनकी में सेवा ज्यादा है श्री संप्रदाय के लोगों के लिए, तो उन्होंने अच्छा। तो फिर उन्होंने लगे ठीक है। तो फिर इस प्रकार से रंगनाथ जी के बुलाने पर रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम से आते हैं, अपने श्रीरंगम में आते हैं। वहां पे फिर वो आचार्य की भूमिका निभाते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। जैसा हमने बताया आपको, 74 मठों का निर्माण किया, 700 सन्यासियों को दीक्षा दी, 12,000 ब्रह्मचारी और लाखों की संख्या में गृहस्थगण। तो इनमें से कुछ इनके शिष्य हैं जिनके विषय में आपने काफी सुना भी होगा, कुरेश, दासरथी, धनुर्दास, गोविंद, एक ब्राह्मण, एक अनंताचार्य आंध्रपुर। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इनके गुरु भक्ति कितनी तेज थी, क्योंकि वो स्वयं भी गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा थे और इनके जो शिष्य थे वो भी गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा पे थे, है ना। तो सबसे पहले है कुरेश का, है ना। कुरेश जो थे वो, इनका नाम कुरेश क्यों था, क्योंकि कुरा गांव के वो राजा थे, है ना, किंग थे, और बहुत धन से संपन्न थे, है ना। बहुत पैसा था इनके, मतलब गोल्ड कॉइन्स, पैसा मतलब वो रुपया नहीं, गोल्ड कॉइन्स था। और ये सुबह से लेकर के रात तक वो दान भी देते थे, जो भी आता था उनको दान देते थे, और रात्रि में वो जाकर के दरवाजा को बंद करते थे। तो जब वो दरवाजा बंद करते थे तो लक्ष्मी को आवाज सुनाई देती थी। तो एक दिन कांचीपुरम से वरदराज लक्ष्मी जी ने पूछा, ये कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार से दरवाजा लगाता है, आवाज करता है, कौन व्यक्ति है? तो उन्होंने बोला कि ये कुरेश है, सुबह से लेकर रात तक क्या करता है, ये केवल दान ही देता है। तो लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ ना। तो कुरेश जो है वो काफी आकर्षित थे रामानुजाचार्य से, है ना, उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने मन बना लिया कि अब हम दोनों को, पति और पत्नी दोनों को, जाकर के रामानुजाचार्य से क्या लेना है, दीक्षा लेना है। तो जितना उनका धन था सभी धन को छोड़ करके, सभी को मतलब बांट करके वो जा रहे थे श्रीरंगम की तरफ। रात्रि में जब वो सोए तो उनकी पत्नी काफी डर रही थी ना? तो कुरेश ने उनसे पूछा कि आप डर क्यों रहे हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और डर तो उसी को लगता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ खोट होता है, तो आपके साथ क्या चक्कर है, आप डर क्यों रहे हो, आपने कुछ सोना वोना छुपाया है क्या कहीं पे? कह रही हाँ, एक सोने का प्लेट में ले आए हूं। बोले क्यों लाए प्लेट को? कह रहे आप सोने के प्लेट में खाते हो ना, इसलिए मैं लाए हूं। छोड़ो उसको, यही तो तुम्हारे डर का कारण है। तो वो भी उन्होंने जब दे दिया, बोले देखो कितने पूर्ण रूप से भगवान की योजना पे निर्भर रहो ना। तो फिर वो ऐसे आगे करके जाते हैं, वहां पे उनसे दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा में भी इतने बड़े वो पैसे वाले थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, वहां पे भिक्षाटन कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई और बारिश में उनको किसी प्रकार का भिक्षा प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे भूखे पेट वो सो रहे थे। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने स्पेशल प्रार्थना की रंगनाथ जी से कि रंगनाथ जी आज मेरे पति जो है वो भूखे पेट सो रहे हैं ना, इनके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। तभी रंगनाथ जी के एक पुजारी उनके घर पे आते हैं, बोलते हैं कि आज महाप्रसाद है आपके लिए, है ना, उनको महाप्रसाद देते हैं। तो जब कुरेश को पता चलता है कि महाप्रसाद आया हुआ है स्पेशल, है ना, एक पुजारी ने वहां से भिजवाया है, तो वो पूछते हैं कि तुमने कहीं प्रार्थना तो नहीं किया था, कुछ बोला तो नहीं था? कह रहे हाँ, मैं देखिए आप सो रहे थे, भूखे पेट सो रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको खूब डांट लगाते हैं, तुमने देखो भगवान को डिस्टर्ब किया, उसके साथ साथ उनके सेवक को भी डिस्टर्ब किया, है ना, ये अच्छा नहीं है भगवान से सेवा लेना, है ना, आज के बाद ऐसी प्रार्थना मत करना। देखिए कितना हाई लेवल ऑफ सरेंडरनेस है इनका, सेवा भाव कितना ज्यादा है। तो इस प्रकार के कुरेश है, और यही कुरेश हैं जो जाते हैं रामानुजाचार्य जी के साथ उत्तर भारत में, कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर में एक शारदा पीठ है, और शारदा पीठ में बोधायन सूत्र, बोधायन भाष्य है वेदांत भाष्य के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीर में वो भी एक ही कॉपी था, तो उनको वो चाहिए था श्री भाष्य की रचना करने के लिए, जो कि वेदांत सूत्र पर टिप्पणी है। तो वहां जब जाते हैं शारदा पीठ में ये दोनों, तो वो लोग मना कर देते हैं, बोलते कि वो तो बोधायन भाष्य था, वो तो कीड़े मकोड़े ने उसको खा लिया, देने से मना कर देते हैं। तो फिर रात्रि में जब ये सोते हैं तो उनके स्वप्न में शारदा माता, दुर्गा माता स्वयं आती है, बोलती है वो लोग तुम्हें झूठ बोल रहे थे, ये लो बोधायन सूत्र, ये लो जल्दी से श्री भाष्य का लिख दो, और लेकिन यहां से भाग जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें क्या करेंगे, मार देंगे। तो वहां से वो भागते हैं, लेकिन जब इन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है बोधायन सूत्र, वो लेकर के ये लोग चले गए हैं, तो इनके पीछे वो आते हैं ना, और भागते भागते इनको कैच भी कर लेते हैं ना? तो फिर बोलते निकालो वो शास्त्र, तो शास्त्र उनको दे देते हैं। फिर रामानाचार्य को बहुत बुरा लगता है, कितनी मुश्किल से हम इतने दक्षिण भारत से उत्तर भारत कश्मीर में आए, इतनी मुश्किल से माता शारदा ने हमें ये बुक दिया था, वो भी ये लेके चले गए। तो कुरेश कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने समय में मैंने वो सारे श्लोक याद कर लिए थे जितना भी श्लोक था वो सारा श्लोक मुझे याद हो गया। देखिए कितनी बड़ी सेवा है ना, गुरु का एक प्रकार से प्रोजेक्ट है ये ना, कि श्री भाष्य को लिखना है, और इस प्रोजेक्ट में कितने बड़े इंस्ट्रूमेंट साबित हुए, कौन? कुरेश। ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन था उनका ना, इसका पालन करने के लिए, और पूरा का पूरा वो बोधायन सूत्र ही याद कर गए। और फिर जब श्री भाष्य की रचना कर रहे थे तब वो बोलते थे, कुरेश जो उसको लिपिबद्ध करता था ना, तो श्री भाष्य लिखने में कुरेश का बहुत बड़ा योगदान है। और कुरेश के विषय में और भी है कि जैसे पिछले क्लास में करुणाचंद पूजन बहुत डिटेल्स है आपको, वो राजा कोला तुंगा एक था वो कैसे कैसे वो चाहता था कि सब सेवाइट बन जाए, तो जब कुरेश को पता चला तो कुरेश ने बोला कि आप मत जाइए वहां पर, रामानुजाचार्य जी को मना किया, वो खुद जो है वो पहन लिया उन्होंने सन्यासी का वस्त्र, रामानुजाचार्य जी को गृहस्थ का वस्त्र पहना दिया, रामानुजाचार्य जी को उन्होंने जंगलों में भेज दिया, और कुरेश जो है सन्यासी बनकर जाते हैं उस राजा के उसमें, फिर वो राजा उनको बंदी बना लेता है, उनकी आंखें निकाल देता है ना, और बाद में फिर जब वरदराज जी के समक्ष वो जाते हैं तो वरदराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि उस जिस व्यक्ति ने मेरी आंखें निकाली उसको भी माफ कर दो ना, जो राजा था उसको भी माफ कर दो। तो बाद में जब रामचंद्र कहते हैं कि तुम मांगो कि तुम्हारी आंखें दे दे ये, क्योंकि तुम्हारी ये शरीर तुम्हारा नहीं है, किसका है? ये मेरा है। तुम्हारी आंख ही नहीं रहेगा तो क्या सेवा तुम करोगे, है ना, इसलिए आंखें मानो, ये मेरा ऑर्डर है। तुम पता नहीं क्या क्या मांगे जा रहे हो अपने हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ कि अपने आंखें मांगो, ये बहुत कुछ करना है आंखों से। तब जब उनके गुरु ने बोला तब जाकर कुरेश ने बोला ये थोड़ा आंख भी दे दीजिए तो उनका आंख की भी प्राप्ति हो गई, है ना। तो इतने बड़े इतने महान उनके शिष्य हैं कुरेश। और उसका दासरथी है, दासरथी के विषय में आपने काफी सुना होगा। धनुर्दास है ना, धनुर्दास के विषय में सुना है कि जो इतना आकर्षित था एक स्त्री की आंखों से ना, जब रंगनाथ जी का पैलन क्वीन जा रहा था, जब उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तब उस शोभा यात्रा में सभी रंगनाथ जी की तरफ देख रहे थे और धनुर्दास किसकी तरफ देख रहा था ना, एक स्त्री के आंखों की तरफ। अब वो भी कैसे देख रहा था, वो उल्टा जा रहा था, वो प्रोसेशन ऐसा जा रहा था, स्त्री भी ऐसे जा रही थी, उसके सामने वो ऐसे उल्टा उल्टा चल चल के सामने ऐसा फेस टू फेस करके छतरी लगा करके। अब देखिए इतने हजारों की संख्या में लोग हैं और एक व्यक्ति एक स्त्री को देखे जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, उसको छतरी लगा रहा है, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? आप क्या सोच रहे हैं अभी, क्या सोचेंगे? ये कितना निर्लज व्यक्ति है, नहीं या भगवान को देखना चाहिए, स्त्री को देख रहा है ये, वो भी खुलेआम, इसको कोई इतना बेशरम है। तो सब उसको गलत ही सोच रहे थे उसके विषय में, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी ने जब देखा तो उन्होंने क्या सोचा कि इसका जो आकर्षण है कि स्त्री की आंखों की तरफ, उसको मुझे परिवर्तित करना है, भगवान की आंखों की तरफ उसको आकर्षित करना है ना। तो कंडेम करने के बजाय उनके हृदय में क्या था, कंपैशन था ना। कई लोग कंडेम करते हैं, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, नहीं, उनका अंदर करुणा की भावना थी कि इसको किस प्रकार से भगवान की तरफ आकर्षित करें। तो फिर उस दिन सायंकाल को कहते हैं, और फिर उस समय उसको कहते हैं कि क्या तुम क्यों इसकी इतनी आंखों से आकर्षित हो। कहते इसकी जैसे मैंने आंखें देखी नहीं कहीं, इतनी सुंदर आंखें हैं। बोले इससे भी सुंदर आंखें तुम्हें दिखा दूं तो? बोलता मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर उसकी उसके पीछे जाऊंगा। बोला आज शाम को मैं तुम्हें दिखाऊंगा इससे भी सुंदर आंखें। तो फिर रंगनाथ जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा अपनी स्पेशल कृपा दृष्टि कीजिए इसके ऊपर। और सायंकाल का समय होता है, वो आरती करते हैं, आंखों के ऊपर विशेष लैंप दिखाते हैं। जब धरुदास भगवान की आंखों की तरफ देखता है, बोलता वाह इतने सुंदर है, वो देखते ही रह जाता उनकी आंखों को, है ना। और फिर वो बहुत लज्जित भी होता है कि मैं कैसे आकर्षित था एक स्त्री की आंखों की तरफ और आपने मुझे बचा लिया। तो वो भी एक शिष्य बन जाते हैं उनके। ये सब गृहस्थ शिष्य हैं इनके। कई बार जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, सारे के सारे गृहस्थ शिष्य हैं। कुरेश का आपने सुन ही लिया। अब देखिए धरुदास जी इतने महान, इतने अच्छे उनके शिष्य बन गए कि वो उनकी सेवा के लिए जो भी था धन वगैरह सब वो उनकी सेवा में वो लगाते थे। अपनी पत्नी को भी इसी प्रकार से उन्होंने ट्रेन किया था ना। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके मठ में ना ये इस प्रकार की बातें चलने लगी कि जो हमारे गुरु जी हैं वो धनुर्दास से ज्यादा अफेक्शनेट हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उनके गले में हाथ दे करके चलते हैं। तो ये देख करके उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा जेलिसी एक ईर्ष्या की भावना आ रही थी। तो जब इनको पता चला, रामानुजाचार्य जी को बोला कि चलो इनको मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, वहां जो उनका जो आश्रम था उस आश्रम में जितने धोती कॉपिन थे उसको उलट पुलट कर दिया, थोड़ा फाड़ छेड़ दिया ना। और फिर देखा क्या हाल है। तो उन्होंने देखा कि आपस में सारे ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने लगे ना। और फिर उनको बोला कि देखो अभी तुम जाओ और हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो धनुदास के घर जाओ और उसके जो स्त्री होगी उसके जितने भी धन होंगे वो लेकर के घर आ जाना। तो जाते हैं और उनकी स्त्री सो रही होती है, तो सोते हुए अवस्था में उनके जितने भी सोने आभूषण होते हैं वो लेकर के आते, लेकिन वो थोड़ा पलटती है। तो जैसे वो पलटती है तो इनको डर होता है, वहां से भाग के आ जाते हैं। तब क्या होता है, तब तक धनुर्दास को रामानुजाचार्य अपने वार्तालाप में लगा करके रखते हैं। फिर बोलते हैं कि देखो अब धनुर्दास घर चला गया है, अब फिर जाकर के देखो क्या वहां की स्थिति है। तो फिर वो ब्रह्मचारी जाते हैं, सुनते हैं उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। तब उनकी पत्नी कहती है कि हमारे गुरु जी के शिष्यगण आए थे और उस प्रकार का आभूषण ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम्हें तो पूरा दे देना चाहिए था, तो बीच में क्यों भाग के चले गए। तो उन्होंने पूरा देने के लिए करवट लिया था, एक एक साइड का तो उन्होंने ले लिया, दूसरा देने के लिए मैंने करवट लिया था, लेकिन वो डर के भाग गए। तो जब ब्रह्मचारियों ने यह सुना तो उनको बहुत बुरा लगा कि हम देखो एक छोटे से धोती कुर्ता कॉपिन के लिए इतना लड़ रहे थे, यहाँ पर ये माता जी कितनी महान वैष्णवी है, कितने बड़े भक्त हैं भगवान की, और उनके पति देखो धनुर्दास, पता है किस प्रकार से उनके गुरु के शिष्य आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको डांट रहे कि तुम्हें तो सब कुछ दे देना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, इतना बड़ा उनका गुरु की सेवा का भाव ना? उसके बाद एक और ब्राह्मण हुए हैं, वो ब्राह्मण आए रामानुजाचार्य के पास कि मुझे भी आप अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो रामानुजाचार्य जी ने बोला कि ठीक है, आपकी सेवा क्या रहेगी कि आप अपने चरण कमलों का जो जल है वो मेरे ऊपर छींटेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का जल वैष्णवों का जल जब सिर पे आता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं, ना, तो आपकी यही सेवा है। तो ब्राह्मण परेशान हो गया, बोले ये आप कैसी सेवा दे रहे हैं, है ना, मुझे तो आपके चरण की धूली मुझे अपने सर पे लेनी है, जल को लेना है। तो कह रहे नहीं नहीं, आप अगर आप आए थे ना सेवा करने के लिए, है ना, तो सेवा का मतलब यही है ना, जो गुरु का निर्देश होता है उसको पालन करना है। तो मेरा यही निर्देश है आपके लिए कि आपको क्या करना है कि अपने चरणों का जल मेरे सर पे डेली आपको शाम को छींटना है। अब ये सेवा उनको मिल गई, अब वो यही करते थे, उनकी सेवा थी, उनके ऊपर वो पानी ऐसे छिड़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जगह वो कथा में बिजी हो गए और काफी रात्रि हो गया। जब वो वापस आए तो लेट नाइट हो गया था, फिर भी ब्राह्मण जो है वो सोए नहीं थी तब तक। बोले आप सोए क्यों नहीं अभी तक, इतना रात हो गया। कह रहे वो मैंने जल अभी रखा हुआ है आपकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए कितना जो सेवा मिल रहा है, एक ही सेवा थी आंध्रपूर्ण की सेवा थी कि डेली उनको दूध गर्म करके अपने गुरु को देना है ना, यही उसकी सेवा थी। तो सायंकाल को जब रंगनाथ जी का शोभा यात्रा चल रहा था तो वो दूध गर्म कर रहे थे, तो सबने बोला कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो सेवा उसमें शोभा यात्रा में। कह रहे दूध गर्म करने की सेवा मिली है, मैं नहीं जा सकता, है ना, देख रहे। तो जो जिसकी सेवा है गुरु के प्रति जो निष्ठा, कई बार हमें लगता है कि हमें आगे रहना चाहिए ठाकुर जी, गुरु की सेवा से गुरु निष्ठा से ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ना। तो इनके जितने भी शिष्य हैं हम उनके उससे देखेंगे कि गुरु के प्रति इनका जो समर्पण है वो कितना ज्यादा है ना। इस प्रकार से एक और प्रसंग आता है कि जब वो तिरुपति गए, तिरुपति जा रहे थे तो उनके दो शिष्य और थे, यज्ञेश और वरदाचार्य। तो यज्ञेश जो थे वो काफी धनाढ्य व्यक्ति थे, तो उनको पहले ही संदेशा भिजवा दिया गया कि रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, पूरी तैयारी के साथ रहो। तो दो लोग थे वो संदेश लेकर के गए। तो यज्ञेश ने जो है बहुत अच्छा अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये दो लोग जो आए थे उनको उन्होंने पूछा तक नहीं कि जल लेंगे पानी लेंगे खाने का, कुछ पूछा ही नहीं। बस मिल गया मुझे निर्देश, अब हम तैयारी में लग जाते हैं, कुछ भी उनको वैष्णव सेवा नहीं किया। उसके साथ एक और शिष्य थे वरदाचार्य, वही उसी स्थान में रहते थे। तो वरदाचार्य जी जो है बहुत ही गरीब थे, उनके पास वो नहीं था, लेकिन जब वो आए उनके पास तो उनको पहले अच्छे से रिसीव किया, अच्छा प्रसाद वगैरह खिलाया, उनको बोला कि आने वाले हैं इस प्रकार से। तो जब रामानुजाचार्य जी आए तो यज्ञेश के घर पे नहीं गए, किसके घर पे गए, वरदाचार्य जी के घर पे गए, क्योंकि उन्होंने किनको प्लेस किया था, है ना, वैष्णवों को प्रसन्न किया ना। तो महाप्रभु ने इस श्री संप्रदाय से ये दो चीजें ली, इसमें वैष्णव सेवा जो है वहां से लिया है इन्होंने, है ना, शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में है ना बहुत उन्नत है ना ये शिक्षा ली। तो जो वैष्णव उनका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें भी यही है कि सभी वैष्णवों को इस प्रकार सब सेवा कीजिए जैसे कि वो आपके गुरु हैं, गुरु के समान उनकी सेवा कीजिए, ऐसा उनका निर्देश है। तो उनके इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर रामानुजाचार्य जी उनके घर पे आते हैं, लेकिन उनके घर पर उतना धन तो है नहीं, है ना, तो कैसे इतने भक्तों के सेवा वो कर सकते हैं। तो उनके पति जाते हैं सभी जगह भिक्षाटन करने के लिए, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी पत्नी होती है, अब गुरु की सेवा करने के लिए ना वो जाती है एक बिजनेसमैन के पास, है ना, एक व्यापारी के पास, जिस व्यापारी की एक बहुत गलत दृष्टि थी उनकी पत्नी के ऊपर। वो कहती है कि मैं सायंकाल के आऊंगी, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, अभी जो है मुझे आप इतने मेरे गुरु जी आ रहे हैं, उनके सन्यासी शिष्यगण आ रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे बहुत सारे पदार्थ चाहिए, उन कुकिंग करना है। तो उन्होंने उनको दे दिया जो भी सारी चीजें थी, है ना, तो बहुत खुश भी हुआ, क्या सायंकाल को मेरी इच्छा सारी पूरी होगी। तो माता आती है, वो बहुत सुंदर तरीके से पकवान बनाती, ऑफर करती है, और अपने गुरु जी को और उनके जितने शिष्य थे उनको वो भोजन कराती, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। ना? बाद में जब पता चलता है उनके पति को किस प्रकार से ये पैसे कहां से आए, तो वो अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना, कि तुम असली वैष्णवी हो, है ना, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति वो कूट कूट कर भरी हुई है ना, मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम मेरी पत्नी, इस प्रकार से है। तो फिर जब यतिराज को, यमुनाचार्य जी को जब पता चलता है ना, तब वो क्या करते हैं कि बोलते चलो ये जितना प्रसाद है, जो महाप्रसाद है, उसको खिलाते हैं, है ना। तो जब ही वो व्यापारी महाप्रसाद को ग्रहण करता है तो वैसे क्या होता है, उसके अंदर का जितना भी काम भावना होता है वो सब समाप्त हो जाता है और वो भी उनका शिष्य बन जाता है ना। तो देखिए जो ट्राइंग सर्कमस्टांस था उसमें कैसे खरे उतरे ये लोग, है ना, चाहे कुरेश हो, चाहे आपके वरदाचार्य जी की पत्नी हो, चाहे है ना धनुर्दास हो। जो असली परीक्षा जो आती है वो परीक्षा में ही हमें पास करना होता है, जो नॉर्मल डेज होता है उसमें तो चलो मॉक टेस्ट, ये टेस्ट में कोई उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन जो परीक्षा के समय होता है उसमें कोई व्यक्ति पास करता है तभी माना जाता है। ये सब परीक्षा की घड़ियां थी इन लोगों के लिए कि अब मेरे गुरु जी के शिष्य आ रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कैसे इनको प्लीज करना है। तो जो भी जहां पे भी गिरना हो सके वो गिरने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन अपने गुरु की सेवा करने के लिए, है ना। तो ये हम शिक्षाएं यहां से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो दो निर्देश थे, तीनों निर्देशों को, तीसरा निर्देश था कि पराशर नाम रखेंगे एक शिष्य का। तो यही कुरेश के दो पुत्र हुए, और वो दो पुत्र भी कैसे हुए, जब वो महाप्रसाद खाया उन्होंने, जब महाप्रसाद खाया उसके एक साल के बाद उनके दो पुत्र हुए, है ना। तो एक का नाम उन्होंने व्यास रखा और दूसरे का नाम उन्होंने पराशर रखा, और यही पराशर आगे जाकर के रामानुजाचार्य जी के जाने के बाद यही पराशर जो है पूरे श्री संप्रदाय को लीड करते हैं, है ना। ठीक है, इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थे, लेकिन आप सबको भूख लग रही होगी और नींद भी आ रही होगी, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसे कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? बोलिए, तेज बोलिए।
हरे कृष्ण। जैसे श्री संप्रदाय में हम देखते हैं कि गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, तो हम मैं कैसे इसको और बढ़ा सकता हूँ?
कैसे बढ़ा सकते हैं? जो निर्देश है उसको पालन करके। और प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दिया करते थे कि मान लीजिए कोई गुरु है, वो अपने शिष्य को बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अब वो शिष्य इतना बुद्धिमान बन जाता है कि उनको एक गिलास दूध लेके चला जाता है, है ना, ये दूध पीजिए, ये लस्सी पीजिए, ये छाछ पीजिए। गुरु कहते हैं क्या, मुझे सिंपल पानी चाहिए, पानी दे दो भाई। नहीं नहीं, मैं तो आपको ज्यादा प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो कई बार वो इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से जब हम मोल्ड कर देते हैं, है ना, तब दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ना। तो जो हमें निर्देश दिया जाता है पानी पिलाने का, तो पानी पिलाना चाहिए, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जो निर्देश है उसको हम एज इट इज फॉलो करें, तब उसका परिणाम पूरा आता है। तो ये वास्तविक रूप से गुरु निष्ठा है।
हरे कृष्ण। मुझे पहले तो बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने रमणी चरित्र की बताया। जो मेरा प्रश्न है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा वो ये है कि जैसे कि रामानुजाचार्य ने जो धनुदास हैं वो उनको कंटेम करने के बजाय उनको लाइक चेंज करने का प्रयास किया, मतलब चेंज कर दिया उनको। तो जैसे आपने बड़ा अच्छा एक बात कही कि भी हमें मायावादियों के साथ रहना ज़्यादा ठीक है या शेव के साथ ज़्यादा रहना, तो हम मायावादियों को कंटेम करने के बजाय उनको उनके प्रति दया भाव या उनको बदलने का प्रयास करें वो ज़्यादा बेटर है, ये कि उनको कंटेम करें?
मायावादी फिलॉसफी को हम कंडेम करते हैं। अगर मायावादी भक्त बन जाते हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो भक्त बन गए, प्रकाशानंद सरस्वती है वो भक्त बन गए, सब बड़े बड़े मायावादी थे, है ना। तो मायावादी व्यक्ति, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो भक्ति है भगवान का, है ना। भगवान खुद कह रहे हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सना, जो व्यक्ति विशेष है वो भगवान का भक्त है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण है, वो जो आवरण है मायावाद का आवरण है, जो भ्रम है, उससे हमें नफरत करनी चाहिए और उसका खंडन भी करना चाहिए, है ना। उसका ऐसा नहीं खंडन नहीं करें, क्योंकि मान लीजिए आपके बच्चे हैं वो आपके सामने शराब पीते हैं, तो आप क्या करोगे, बेटा तू तो मेरा ही बेटा है, अच्छा बेटा है, चलो चलो शराब मत पियो, बोतल थोड़ी कम कर दो, दो बोतल पीते हो एक बोतल पी लो, ऐसा बोलेंगे क्या, बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, उसके बोतल को उठा के पटक देंगे, उसको जोर जोर से डांटेंगे, बोलेंगे कि नहीं, ये उसका हित है या अहित है, हाँ इसका हित है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्राइम करता है उसको हम जेल में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, उसका हित है या अहित है, तो दिखने में लग सकता है ओ इतने मासूम लोग हैं। आप ऐसे कितने लोग कभी जेल गए हैं, गए हैं कभी, आप जब कैदियों को देखेंगे तो आपसे भी सभ्य नजर आते हैं वो लोग, इतने ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे, आप सब तो थोड़े टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे ध्यान से सुनेंगे, आपको लग रहा है इतने अच्छे ऑडियंस तो मैंने कहीं आज तक देखा ही नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछोगे फटाफट उत्तर देंगे, है ना। तो कई को लग सकता है कि इतने मासूम लोगों को इन्होंने क्या, लेकिन क्या वो मासूम है, क्या क्या उन्हें आप पूछो क्या किया थे जी, हाँ तो दो तीन लोगों का गर्दन उड़ा दिया था, कैंची घुसा दिया था, किसी लोगों को मारा, पांच लोगों को मारा, लगता है कि पांच मच्छर को मार दिए या पांच उसको मार दिए, इतने मासूम दिखेंगे आपको, लेकिन क्या वो मासूम है, है ना। तो वैसे ही ये जो मायावाद फिलॉसफी है वो बहुत खतरनाक फिलॉसफी है, तो उसका खंडन तो हमें करना ही चाहिए, उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, है ना।
लेकिन फिर वो हमसे दूर चले जाएंगे ना, अगर हम उनको लाइक उनका खंडन करेंगे तो वो और ज्यादा मतलब हमसे दूर चले जाएंगे, फिर उनको भक्त कैसे बनाएंगे, मतलब एक खंडन करने से या कंडेम करने से वो मतलब एक बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाते हैं उनको।
हाँ तो ठीक है, वो दूर ही रहे,
पर वो भी एक जीव जीव है, तो हाँ, उनको
जब
भी
आपके
है।
सुनने के लिए आएंगे तब उसको सुनाओ। अब अपने तर्क वितर्क से, जैसे यही रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में हम देखते हैं, है ना, वो जैनियों के पास गए, जैनी राजा जो था वो जैनी राजा था, उसके जैनी पृष्ठ थे बहुत सारे, तब दोनों के बीच में वो हुआ, आर्गुमेंट्स हुए, तर्क वितर्क हुए, तो सभी तर्क में उन्होंने परास्त कर दिया। ये जैनी लोग बखलाने लगे खूब, कैसे कैसे तुम कह रहे हो, ये कह रहे हो, तो राजा ने बोला भाई तुम अपने ठंडे बुद्धि से काम लो, तुम्हारे पास कोई तर्क है तो उस तर्क से उसको डिफीट करो, तुम तो डिफीट ही नहीं कर पा रहे। तो जब राजा ने बोला तब जा करके वो उनके शरणागत हुए। तो इसलिए हमें जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी को हम कट करते हैं, व्यक्ति को कट नहीं करते, फिलॉसफी को कट करना ही चाहिए। महाप्रभु भी कट करते थे, प्रभुपाद जी को देखिए वो कितना कट करते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज को देखिए कितना कट करते थे, प्रभुपाद जी के जितने पुस्तकें हैं उसमें आप देखिए दो तीन एक पेज होता नहीं कि वो फिर से मायावादी हो, मायावादी जरूरत क्या है, क्योंकि मायावाद का जो ग्रिप है पूरे भारतवर्ष में है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा ग्रिप है इसका, तो इस ग्रिप को तोड़ना भक्तों का ही कार्य है, और हम ही उसके ऊपर फूक मारेंगे पुचकारेंगे उनको, है ना, तो ये नहीं चलेगा, उस ग्रिप को हमें तोड़ना चाहिए।
आपके सबसे कैसा बेस्ट वे है कि उनको कन्वर्ट किया जाए, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए उनको,
उसको फिलॉसफी समझा करके, क्योंकि ये लोग फिलॉसफी सुनना अच्छा पसंद करते हैं। अब उनको उपनिषदों से कोट, अब जो रामानुजाचार्य जी की विशेष बात क्या है कि जितने भी इन्होंने खंडन किए हैं उसमें वेद और उपनिषदों का ज्यादा हेल्प लिया इन्होंने, क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं वो वेद और उपनिषद को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते हैं, है ना। तो मध्व संप्रदाय के उन्होंने भागवतम का ज्यादा सपोर्ट लिया है, लेकिन भागवतम को वो लोग मानते ही नहीं कुछ, है ना। तो इसलिए जो वेद की बातें हैं उपनिषदों की बातें हैं इसका सपोर्ट लेकर, क्योंकि उसको उनके ऊपर उनको फेथ है, ना। तो शास्त्रों के आधार पर उसको कट कीजिए, अगर इंटेलेक्चुअल है वो व्यक्ति तो आपकी बातों को सुनेगा। हरे कृष्णा। श्री रामानुजाचार्य पादे की निताय गौर प्रेमानंदे।